Om Shiva, 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 Shiva. अनंत कृपा के सागर परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से इष्ट स्वरूप प्रातर वंदनीय गुरुजनों के शुभ संक अपने पुण्य सत्कर्मों के विगत कुछ दिनों से भगवान की दिव्य विभूति इस सागर तट पर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ बाबुलनाथ महादेव जी के पावन सानिध्य में प्रातर वंदनीय गुरुजनों की इस तपस्थली में बैठ करके हम सब साधक वृंद अपने जीवन की जो समस्याएं हैं अपने दिल की जो पीड़ाएं और वेदनाएं हैं उससे ये आर्त मानव आत्मा कैसे पार जाए और कैसे हम सचित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए इसको समझने की एक ईमानदार कोशिश आचार्य शंकर के द्वारा विरचित धन्याष्टकम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तीन श्लोकों का चिंतन हम लोग कर चुके हैं, चतुर्थ श्लोक का चिंतन चल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा की थी, चार मुख्य बिंदुओं पर आचार्य शंकर इस श्लोक में हमारा ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। दो भाव हमारे बंधन के मुख्य कारण हैं, अहम भाव और मम भाव। और ये दो बड़े प्रबल बंधन हैं, सर्वव्यापक आनंद घन इस ब्रह्म सत्ता को इन दो भावों ने दीनहीन और भिखारी बना करके रखा है। हम सोचते हैं कि पता नहीं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा, कैसा लगेगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ना तो चार भुजाएं उगने वाली है, केवल इतना होगा जो अहंता और ममता की आग से जो हम जल रहे हैं, ये आग सर्वथा शांत हो जाएगी। असल में वेदांत पढ़ने वाले साधकों को बहुत बार भ्रांति हो जाती है कि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। प्राय कम गंभीर चिंतन वाले लोगों को तो बहुत जल्दी होता है, मुझे भी कई मिला। सत्संग करने के लिए गया था, उस इलाके में एक प्रसिद्ध सज्जन जो गांव में तो वेदांत की और अद्वैत वेदांत की चर्चा प्राय कम होती है, परंतु भला हो कबीर का, सूर का, मीरा का, इनके जो पदावली है और इनकी जो अद्वैत की उक्तियां है, ये जन सामान्य तक पहुंची हुई है। हमारे अद्वैत के धारा को, अद्वैत के सिद्धांत को, अद्वैत के विचार को इन्होंने पकड़ करके रखा है। जब हम ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करते हैं, विशेषतः राजस्थान के एकदम इंटीरियर इलाके तक भी जाकर के देखते हैं, वहां के भी जो सिद्ध संत हुए, मीरा है, कबीर है, सूर है, इनके अद्वैत परक जो चिंतन है, धारा है, पद है, इनका चिंतन लोग करते हैं, परंतु गंभीर चिंतन और अध्ययन नहीं होने के कारण बहुत जल्दी ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। जो वेदांत की एक टेक्निकल जो पद्धति है और पूरी जो वेदांत की प्रक्रियाएं हैं, उनसे परिचय नहीं होने से ईमानदार साधक को भी बहुत जल्दी भ्रांति हो जाती है कि मुझे ब्रह्मज्ञान हो गया। क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने का मतलब क्या है? ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही आत्मा है, मैं सत्य हूं और बाकी सब मिथ्या है, आत्मा सत्य है बाकी सब मिथ्या है। इतना समझने का नाम ही हम लोग ब्रह्मज्ञान समझते हैं, साधारणतः इतना ही समझा जाता है। इसलिए कुछ दिन का मेरा सत्संग सुनकर के उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया और अब हम ऐसा प्रचार करेंगे कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आप ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। और उनके स्वयं के बारे में तो प्रचार करते ही हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। मैंने कहा कि भैया मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये आपको कैसे पता चला? बोले और क्या बाकी है, आप इतना सुंदर ब्रह्म को समझा देते हैं, इतना सुंदर ब्रह्म के विषय में बोलते हैं, इतना व्याख्यान करते हैं, हो गया, और बाकी जो है वो तो देह का है, शरीर का धर्म है, ये सब काम है, क्रोध है, लोभ है, आत्मा का तो धर्म नहीं ना है। मैं थोड़ी देर चुप हो गया। मैंने कहा कि भैया एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ होगा, उसके ऊपर तो मैं ज्यादा कुछ न बोलूं तो अच्छा है क्योंकि आपकी प्रसिद्धि है इस क्षेत्र में, परंतु हमारे उपनिषदों में बताया है तरति शोकम आत्मवित। आत्मवित महापुरुष का लक्षण क्या है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का लक्षण क्या है, कसौटी क्या है जहां पर कस करके हम अपने आप को देखें कि ब्रह्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो कसौटी हमारे गुरुजनों ने दिया, तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद जो है, ब्रह्मविद जो है, वो शोक से तर जाता है, शोक से पार उतर जाता है और उसके सारे जो बंधन हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, ऐसे अनुभूति तो मुझे तो हुई नहीं अभी। आप कैसे घोषणा कर सकते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ? तो दूसरे कोई घोषणा करे अथवा ना करे, हम लोग बहुत बार मन ही मन में तो घोषणा कर ही देते हैं कि मेरा तो काम। तो इसलिए आचार्य हमारे सामने कसौटी रख रहे हैं कि आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, आपको आत्मा की उपलब्धि हुई कि नहीं हुई, आपको ब्रह्मानुभूति हुई कि नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाहर से तो कुछ बदलाव दिखाई देगा नहीं। तो पता ऐसे चलेगा कि अहंता और ममता के बंधन का छेद हुआ कि नहीं हुआ। और देखो भैया, जिनको दुनिया को ठगना है और अपने को ठगना है तो रास्ते बहुत हैं। कोई तथाकथित जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है वो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानता है और आप प्रश्न उठा दीजिए तो झट से जवाब देंगे कि मैं तो अकर्ता हूं, बाकी आपको काम, क्रोध, लोभ जो सब दिखाई दे रहा वो अंतःकरण का धर्म है, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म तो है नहीं। परंतु हम देखते हैं कि काम उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, उनके चिंतन को प्रभावित करता है, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, उनकी स्थिति को प्रभावित करता है, क्रोध उनकी स्थिति को प्रभावित करता है, तो हम कैसे संतुष्ट हो जाएं कि वो ब्रह्मविद हो गए। ये बात ठीक है कि ब्रह्मज्ञानी में भी प्रारब्ध के कारण, अंतःकरण के कारण, अविद्या के लेश के कारण काम क्रोध आदि का व्यवहार दिख सकता है, ये शास्त्र सिद्ध बात है, परंतु उससे उनका जीवन तनिक भी प्रभावित नहीं होता है, उनकी चेतना कलुषित नहीं होती है, उनकी भावना कलुषित नहीं होती है, उनका चिंतन कलुषित नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है उनकी जो अंतः शांति है वो कभी भंग नहीं होती है। तो हम तो काम के लिए भी रोने लग जाते हैं, क्रोध के लिए भी रोने लग जाते हैं, लोभ के लिए भी रोने लग जाते, तो कैसे उद्घोषणा कर दे कि ब्रह्मज्ञानी हो गए हम। इसलिए स्टैंडर्ड हमारे सामने आचार्य कायम कर रहे हैं, माइलस्टोन दिखा रहे हैं हम लोगों को अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी के, कि हमारी जर्नी कंप्लीट कहां तक हुई, और रियली में कोई जर्नी हो रही है कि हम एक जगह खड़े ही खड़े केवल जर्नी होने की कल्पना कर रहे हैं। इसलिए इन माइलस्टोनों को समझना बहुत जरूरी होता है बहुत बार साधकों के लिए। तो त्यक्त्वा मम अहम इति बंद करे पदे दे, जब हमारी चेतना ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ती है तो ये अहंता का और ममता का जो बंधन है वो शिथिल पड़ता है, खुलने लगता है। अभी तो हम लोगों का जीवन इस अहंता के और ममता के भीतर इतना टाइट बंधा हुआ है कि दम घुटता है हमारा बहुत बार, और जब साधक थोड़ा गहरी अनुभूति में पहुंचता है तो उसको एक राहत मिलती है, एक चैन की सांस लेता है, और ये जो खचर पचर लगी हुई है जीवन में उससे उसकी चेतना ऊपर उठती है, ऊर्ध्वगामी होती है। त्यक्त्वा मम अहम इति बंद करे पदे दे, तो ये कसौटी है, हम साधक अपने आप को कस करके देख सकते हैं कि अहंता का और ममता का बंधन कुछ ढीला पड़ा कि नहीं। और यदि नहीं पड़ा है तो साधक को अत्यंत ईमानदारी से अपने से प्रश्न करना चाहिए, व्हाई नॉट, क्यों मेरा यह बंधन धीमा नहीं पड़ रहा है, क्यों मैं ममता और अहंता के इस निकृष्ट रूप से अपनी चेतना को ऊपर क्यों नहीं उठा पा रहा हूं। एक ईमानदार साधक को अपने से ये प्रश्न अवश्य करना चाहिए और हजारों बार करना चाहिए, उसको शांति से जीने नहीं देना चाहिए अपने आप को। साधना बच्चों का खेल नहीं है। जब हम अपने आप के सामने प्रश्नों की बौछार लेकर के खड़े नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंतस के भीतर तो दूसरा घुस नहीं सकता, दो ही रास्ता है, या तो हम किसी अच्छे महापुरुष की शरणापन्न हो, गुरु की शरणापन्न हो, उसका निरंतर सानिध्य मिलता हो तो वो हमारे पूरी स्थिति से वाकिफ होंगे और हमें सजग करते रहेंगे, और यदि ऐसा वातावरण हमें उपस्थिति यदि नहीं है, हम अपने घर में रह रहे हैं, हम अपने समाज में रह रहे हैं, हम अपने वातावरण में रह रहे हैं, तो दूसरे तो आकर के हमारे पास प्रश्न शायद ही उठाए कि भाई तुम्हारा ममता और अहंता क्यों नहीं घटी। पर तो हमारा तो ये कर्तव्य है कि हम ईमानदारी से अपने सामने ये प्रश्न रखें कि भैया तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम जो इतना सब कर रहे हो केवल मात्र दिखावा है, क्या अपने मनोरंजन के लिए तुम इतना भर कर रहे हो। और अपने से पूछना चाहिए, यदि तुम ईमानदारी से कर रहे हो और तो करना चाहते हो तो हमारी ममता और अहंता क्यों कम नहीं हो रही, ये प्रश्न हम ही पूछ सकते हैं अपने से, और किसी को पूछने का शायद अधिकार हम नहीं देते और है भी नहीं। हमारा कल्याण करना यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम नहीं पूछेंगे तो हमसे आकर के और कौन पूछेगा और क्यों पूछेगा। तो इसलिए ये आचार्यों ने एक स्टैंडर्ड रखा हमारे सामने कि भैया इसका त्याग करो। तो इस बंधन के स्वरूप के लिए कल हम लोगों ने अच्छी तरह से चिंतन किया कि अहंता का जो बंधन है वो ज्यादा मुख्य और मजबूत है। उसने आप ऐसा माने कि हमारे इस पूरे शरीर को बांध करके रखा है, और ममता का बंधन ऐसा है फिर बंधे हुए शरीर के ऊपर और एक गले में रस्सी डाल करके एक खूंटे से और बांध करके रखा है। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो बंधा हुआ शरीर है वो खुल जाए जैसे भी, फिर गले में पड़ी हुई रस्सी तो हम अपने हाथों से भी खोल देंगे। इसलिए अहंता का बंधन से हम पहले मुक्त हो जाए तो ममता की समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बार हम थोड़ा उल्टा करते, ममता से ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहते, अहंता को बचाए रखना चाहते हैं तो साधकों को इतनी सफलता मिलती नहीं है। इसलिए कोशिश इधर होनी चाहिए कि मेरा जो अहम बोध है, इसका जो मिथ्यापना है, ये मुझे गहराई से समझ में आए तो अहंता का और ममता का बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ता है। जिनके अहंता और ममता का बंधन ढीला पड़ गया तो ये जो तथाकथित मान और अपमान है जिसको लेकर के हम बड़े पजेसिव और दीनहीन होते हैं, हम भीतर से बड़े भिखारी बने रहते हैं, हमारे हर कर्तव्य के पीछे एक डिमांड होती है कि दे शुड मस्ट रिकॉग्नाइज। मैं जिनके लिए कर रहा हूं दे शुड मस्ट रिकॉग्नाइज, वो एक्सेप्ट करे, वो स्वीकार करे और आकर के बोले कि वाह आपने क्या किया, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा रस मिलता है। और करने पर भी यदि कोई रिकॉग्नाइज ना करे, उसको यदि एक्सेप्ट ना करे तो हमारा चेहरा लटक जाता है। हमारा पूरा जो प्रयास है, पूरा जो एफर्ट है, वो प्रशंसा के केंद्र में रख करके हम करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे उस कर्म की जो दिव्यता है और उसका जो असली इफेक्ट होना चाहिए था वहां तक वो चीज पहुंचती नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, मैं यदि विद्वान हूं तो मेरे भीतर बहुत सहज में इच्छा होगी कि मेरी विद्वत्ता को आप रिकॉग्नाइज करें, आप एक्सेप्ट करें और मुझे बोले कि वाह महाराज आप कितने विद्वान हैं। अच्छा, एक प्रश्न है भैया, मैं विद्वान हूं आप क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे? आप धनवान हैं, आपके पास बहुत धन है, तो हमारी बड़ी सहज एक आकांक्षा होती है कि सब लोग हमारे इस धनवत्ता को स्वीकार करें और कहें कि वाह कितना धनवान है। मेरा प्रश्न है कि ठीक है हमारे पास धन है, परंतु लोग क्यों रिकॉग्नाइज करें कि आपके पास धन है? क्यों रिकॉग्नाइज करें? आपके पास धन है, आप अपना धन लेकर के रहिए। आपके पास विद्या है, आप अपनी विद्या का आप एंजॉय करिए, अपने धन को आप एंजॉय करिए, अपने पावर को आप एंजॉय करिए, उसमें तो कोई दोष नहीं है। पर तो हम ये जो डिपेंड हो जाते लोगों के पास कि भैया मेरे पास है तुम रिकॉग्नाइज करो, और ऊपर ऊपर से तो हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये कोई बहुत गलत डिमांड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास धन नहीं है और मैं लोगों को कहता हूं कि मेरे धन को रिकॉग्नाइज करो, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास विद्या नहीं है और आप मेरी विद्या को रिकॉग्नाइज करो। परंतु ये जो मूल भावना है कि दे शुड एप्रिसिएट, दे शुड रिकॉग्नाइज, ये हमें भीतर से दीन बनाती है, हीन बनाती है, प्रशंसा का प्रिय बनाती है, लालसी बनाती है, और इससे हमारे जीवन की शांति भंग होती है, हमारे अंतस की शांति भंग होती है, हमारे जीवन का रिदम भंग होता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं कि मैं लोगों को कैसे खुश करूं ताकि मेरी विद्या को स्वीकार करे, मैं लोगों को कैसे खुश रखूं ताकि मेरे धन को स्वीकार करे, मैं लोगों को कैसे खुश रखूं ताकि मेरे मान को स्वीकार करे, और हमारा पूरा जीवन लोगों को खुश रखने के लिए बीत जाता है। हम इधर ध्यान नहीं देते कि भैया राम भी खुश नहीं कर पाए, कृष्ण भी खुश नहीं कर पाए, और मैं खुश करने में लगा हुआ हूं। इज इट पॉसिबल? इस दीनता का साधक को एक स्तर पर जाकर के त्याग करेगा तभी वो स्वतंत्रता से जी सकता है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है हमारा जीवन शास्त्रीय पद्धतियों से अनुसृत हो, हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि हम धर्म का उल्लंघन न करें, हमारे लिए बस इतना पर्याप्त है हम धर्म के पथ पर चलते रहे, लोग क्या कह रहे हैं इसके ऊपर हमने यदि अपना पूरा ध्यान लगा दिया तो हम लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे। हमारे भीतर एक दीनता आ जाएगी, एक हीनता आ जाएगी, एक लोगों को हमेशा प्रसन्न करने की एक चेष्टा जन्म ले लेगी, और बड़े दीनहीन और मलिन बन जाएंगे। लोगों ने थोड़ी सी ताली बजाई तो हम लोगों को लगेगा वाह मैं भी तो कोई हूं भैया, और लोगों ने यदि निंदा कर दी तो हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी मेरा मुंह लटक जाएगा, अरे देखो कोई मानता ही नहीं है मुझे, कोई नहीं मान रहा। ये जो साधक की एक समस्या है, बड़े बड़े सजग और शिक्षित चेतना भी यहां उलझ जाती है। इससे करुण गाथा और हम लोगों के जीवन की क्या होगी, साधकों के जीवन की क्या होगी कि अपना खा पी रहे परंतु लोगों के ऊपर डिपेंड है। मानावमान सदृशा, इसलिए साधक को धर्ममय जीवन जीते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए कि आई डोंट केयर, ये अच्छी बात नहीं है, ये इस उपदेश का सार नहीं है कि आई डोंट केयर, आप क्या सोचते हो कि आप क्या कहते हो मैं वही करूंगा जो मेरे मन को अच्छा लगेगा, ये बात नहीं हो रही है। वी शुड केयर, वी मस्ट केयर, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, हमारा जीवन एक दूसरे के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे ऊपर एक मानव होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उससे आंख बंद करके हम घोषणा नहीं करते कि मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने धर्ममय कर्तव्य का पालन करने के बाद मैं मुड़ करके नहीं देखूंगा कि कोई ताली बजा रहा है कि कोई थूथू कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कर्तव्य था धर्ममय कर्तव्य को पालन करना, मैंने कर दिया, बस मेरी पूजा कंप्लीट, मेरा काम कंप्लीट। भैया इतना जो शुद्ध और परिपक्व होगा ते धन्य, वो धन्य होगा। इसलिए मानावमान सदृशाः, ये दूसरा पॉइंट है, मैं ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, मेरी साधना में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, मेरा अंतस शुद्ध हो रहा है कि नहीं। साधक को कैसे पता चलेगा, वो अपने को इस कसौटी पर कस के देख रहा है कि भैया मान और अपमान में सदृशता आ रही है कि नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम संसार को पूरा संतुष्ट कर दें, कोई हमारी निंदा ना करें, कोई हमारे लिए ओसा शब्द ना बोले, ऐसा एक वातावरण हम क्रिएट कर दे तो फिर बाद में हम साधना करेंगे। मैंने सुना है कि पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कंप्लेन की, देखो विष्णु जी का कितना नाम है, कितना सुंदर उनका जीवन है, कितनी मान्यता है, अब विष्णु जी की प्रशंसा की तो बाकी उनके जो अनुसर है इंद्रादि सबका जीवन कितना वेल सेटल्ड पर्सन दे आर। और आपका जीवन ये क्या जीवन है, माने क्या आप कर रहे हो, लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हो, थोड़ा संभल करके रहो, थोड़ा सज धज करके रहो, थोड़ा स्वीलाइट बन करके रहो, सामाजिक बन करके रहो। नंग धड़ंग भांग खाते हो, जब देखो ध्यान करते रहते हो, जब देखो ध्यान करते रहते हो, जब देखो ध्यान करते रहते हो, ये क्या है? शिव जी ने कहा कि देवी जी, मारवाड़ी में कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब अपने घर में ढोल बजवाना होता है तब पता चलता है कि ढोल बजवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये चाहती हैं कि मैं संसार को संतुष्ट करके जीऊं और वो मेरी प्रशंसा करे, तो यही आपकी इच्छा है। एक बार ट्राई करके देखा जाए कि संसार को संतुष्ट किया जा सकता है कि नहीं। नंदी को बताए कि भैया थोड़ा काम आ गया, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जाओ। नंदी घोड़ा बन गए, गणेश जी को भी साथ में ले लिया और गणेश जी तो दिखने में तो छोटे लगते हैं, पर तो एक सवा कुंटल के तो होंगे ही होंगे। गणेश जी को बिठा दिया आगे, बीच में मां को बिठा दिया, पीछे शिव जी बैठ गए और तीनों एक गांव से चलने लगे। गांव वालों ने कहा रे छी 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 छी, देखो तू एक प्राणी के ऊपर तीन तीन चढ़े हुए हैं, एक तो ये दो कुंटल का लड़का, एक ये हट्टी कट्टी और एक ये स्वयं, कम से कम ये तो पैदल चल सकता है। पार्वती जी ने कहा कि बड़ी निंदा हो रही है, आप नीचे उतर जाइए। शिव जी उतर गए, गए आगे वाले गांव में, कहा कि हमने सुना है कि पत्नी भक्त होते हैं, परंतु इस बंदे जैसा पत्नी भक्त आज तक नहीं देखा, स्वयं पैदल चल रहा है और महारानी जी को अपने ऊपर चढ़ा करके चला रहा है। इस महारानी को भी देखो, एक तो सावित्री हुई जो पति का प्राण प्राप्त करने के लिए जमराज से जाकर के भिड़ गई, और ये महारानी देखो पति तो पैदल चल रहे और घोड़े पर बैठ के चल रही है। पार्थिव जी ने कहा कि बड़ी निंदा हो रही है, मैं भी उतर जाती हूं। थोड़ा आगे गए, लोग करे रहे देखो 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 क्या कलयुग आ गया, मां और बाप दोनों पैदल चल रहे हैं और ये राजकुमार देखो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ ठन 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 करते हुए जा रहा है। गणेश जी भी नीचे उतर गए, आगे गए कि लोगों ने कहा कि देखो आजकल के जमाने में भी लोग कितने मूर्ख होते हैं, घोड़ा होता ही इसलिए है कि सवारी करे, और तंदुरुस्त घोड़ा एक लेकर के तीनों पैदल चल रहे हैं। शिव जी ने पूछा कि पार्वती जी को और आगे जाने की जरूरत है क्या? कहा कि ना, चलिए अपने कैलाश में वापस चलिए। मैसेज ये है, हम जब तक चाहेंगे कि पूरे संसार को वेल सेटल्ड करके सबको सेटिस्फाइड करके फिर मैं साधना करूंगा, क्या लगता आप लोगों को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं होगा ऐसा, हम भीतर से गहराई से विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा गहराई से विश्वास करना चाहिए, सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, अपने से जितना बन पड़े सबका सहयोग करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबका उपकार जितना बन सके उतना करना चाहिए, परंतु ये करने के लिए अपने मेन लक्ष्य को भूल नहीं जाना चाहिए, और ये करने के भीतर भी अपने मान और अपमान को बड़ा कारक नहीं बनाना चाहिए कि लोग ताली बजाएंगे इसलिए मैं जान लगा दूं। और लोग मेरी तरफ देखेंगे नहीं, इसलिए मैं मेरा कर्तव्य है करना परंतु न करूं क्योंकि लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। ऐसी दो गलती साधक को नहीं करना चाहिए। शास्त्र सम्मत धर्ममय जीवन जीते हुए मान और अपमान की वासना से ऊपर उठना चाहिए। मानावमान सदृशाः, दो पॉइंट हो गए। तीसरी चीज है समदर्शिनश्च। ये जो आचार्य शंकर बता रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि साधक के चित्त के एक एक आभूषण है, एक एक अलंकार है, एक एक गहना है। इन अलंकारों से सुसज्जित यदि कोई साधक हो मुझे लगता है वो भगवान का बड़ा दिव्य और बड़ा प्यारा रूप होगा। ये अलंकार है सब साधकों के। गीता जी में ऐसे अलंकारों की बात बहुधा याद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच अभयम सत्व संशुद्धि। ये सब अलंकार है जिससे साधक अपने जीवन को सुसज्जित करता है और उसका जीवन दिव्य पवित्र और पावन हो जाता है। आइए एक तीसरे अलंकार की चर्चा करते हैं, समदर्शिनश्च। समदर्शिता साधना में एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है और गीता जी ने तो इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया, इसको ज्ञानी की परिभाषा बना दी। आप रियल ज्ञानी हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा? कहा कि पंडिता समदर्शिनः। पंडिता, और ये कर्मकांड वाले पांडित्य की बात वहां नहीं हो रही है गीता जी में। ये पांडित्य माने आत्मविज्ञान। आप आत्मविज्ञान से परिसंपन्न हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये आपके समदृष्टि से पता चलेगा। और इस समत्व को योग बताया, समत्वम योग उच्यते। समदर्शिनश्च, भगवान कृष्ण ने ही केवल इस बात पे जोर दिया, वो ऐसी बात नहीं है, भगवान राम भी कुछ ऐसी ही बात बताते हैं। समदर्शी इच्छाक सुनाई हरस शोक भय नहीं मन माई अस सज्जन मम उर बसे कैसे लोभी हृदय बसही धन जैसे अस सज्जन मम उर्वशे कैसे लोभी हृदय बसही धन जैसे। क्या सुंदर दृष्टांत दिया, हम लोग बड़े सरलता से समझ सकते हैं क्योंकि हमारे दिल की बात बताई है। समदर्शी इच्छा कसुनाई हर्ष शोक भय नहीं मन माई अस सज्जन मम उर बसे कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसे। यदि भगवान से दिल लगाना चाहते हो, अतः भगवान के दिल में अपने लिए छोटी सी जगह रिजर्व करना चाहते हो, एक बुकिंग यदि एडवांस बुकिंग करना चाहते हो, हम लोग एडवांस बुकिंग करते हैं ना, चीजें सस्ती मिलती है। फ्लैट्स जब बनना शुरू होता है आप एडवांस में बुक कर दे तो बाद में जो मिलता है उससे सस्ता मिलता है। भगवान के दिल में यदि एडवांस बुकिंग करानी है तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको समदर्शिता। जो चेतना अद्वैत के संस्कारों से थोड़ी सी भी परिष्कृत यदि हो जाए उसके भीतर ये समता की सुगंध विकसित होने लगती है। अद्वैत का और समता का गहरा संबंध है। जितनी जितनी हमारी अद्वैत निष्ठा बढ़ेगी उतनी उतनी हमारे भीतर समता की सुगंध बढ़ती जाएगी। फिर आप किसी के भी साथ एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी जाति में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी परिवार में। और समता का मतलब है हर परिस्थिति में हमारा चित्त समान रहे, हम एडजस्ट करके रहना सीख जाए। देखो हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, समता की कमी के कारण हमारे भीतर रेजिस्टेंसी बहुत आ जाती है, एक्सेप्टेंसी की कमी हो जाती है और इससे हम बड़े दुखी होते हैं। एक चीज आप विचार करके देखिए, जब 12 घंटे का दिन पूरा हो जाता है, भगवान भास्कर जब अस्ताचल को चले जाते हैं, रात आ जाती है, अंधकार छा जाता है, तो हम लोग रात से लड़ना झगड़ना शुरू करते कि नहीं अरे रात आ गई, अरे चारों तरफ अंधकार छा गया, अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, ये दुर्भाग्य कैसे आ गया, ऐसा झगड़ते कि नहीं झगड़ते? नहीं झगड़ते। क्या किया? अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर दिया। रात के बाद दिन आ गई है, दिन के बाद यदि रात आ गई है तो रात में कैसे जीना है, क्या करना है, हमने एडजस्ट करके अपना एक लाइफ स्टाइल बना दिया। इसी प्रकार गर्मी के बाद सर्दी आ गई, रोने लगते हैं कि नहीं अरे सर्दी आ गई, अब क्या होगा, अरे तो भयंकर समस्या आ गई, अब किधर जाए, रोते हैं कि नहीं रोते हैं? नहीं रोते। सर्दी के वातावरण में जैसे जी सकते हैं वैसे वस्त्र निकाल देते हैं, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर लेते हैं और आराम से जी लेते हैं। बाद में जब वर्षा आती है तो अपने जीवन को वर्षा के अनुरूप ढाल देते हैं। तो भैया ये प्रकृति के कुछ नियम है जहां हमने एडजस्ट कर लिया। सर्दी रात के बाद दिन आता है, हम एडजस्ट करके जी गए। सर्दी के बाद गर्मी आती है, हम एडजस्ट करके जी गए। गर्मी के बाद बरसात आती है, हम एडजस्ट करके जी गए। तो ठीक ऐसे ही सुख के बाद दुख आता है, हम वहां एडजस्ट क्यों नहीं करते भैया? ठीक वैसे ही मान के बाद अपमान आता है, हम वहां एडजस्ट क्यों नहीं कर पाते भैया? ठीक वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है, हम वहां एडजस्ट क्यों नहीं कर पाते भैया? ये प्राकृतिक है, ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है प्रकृति का नियम है, सर्दी के बाद गर्मी आती है प्रकृति का नियम है, गर्मी के बाद बरसात आती है ऐसे प्रकृति का नियम है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आएगी ये प्रकृति का नियम है। हम वहां क्यों फेल हो जाते भैया? और ये बताइए, कोई भी रात से लड़ने लग जाए और रात भर रोते रोते बिता दे, क्यों आई क्यों आई क्यों आई क्यों आई, आदमी ज्यादा दिन बचेगा कि नहीं बचेगा? दिनकर कहां गया रे, आज माइक मेरा गला पकड़ रहा है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये तभी संभव है जब हमारे भीतर अद्वैत की निष्ठा बढ़े और अद्वैत की निष्ठा को हम समता में परिवर्तित कर पाए और धीरे 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 गर्मी सर्दी मान अपमान लाभ हानि जन्म मृत्यु ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये जो नेचुरल इंसिडेंट्स है जो हमारी सीमा से बाहर है, उनको हम बहुत नेचुरली यदि एक्सेप्ट कर पाए और खुले दिल से कहे कि वेलकम, तब तो भैया जीने का कुछ आनंद है, जीने का कुछ रस है, जीने का कुछ मजा है। और अपने चित्त को और अपने दिल को यदि इतना छोटा बना दिया, इतना एक खांसा बना दिया कि भैया इसमें फिट होगे तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, तब तो भैया आपके दिल में फिट होने वाली चीजें बहुत कम मिलेगी और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो ना आपके दिल में फिट होगी ना आप उनके साथ एडजस्ट होगे और जीवन भर धक्कम धक्का धक्कम धक्का लगता रहेगा और देखते 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 जो है कष्ट में रोते रोते आंखों में आंसू भर के यहां से चले जाए। थोड़ा गला पकड़ रहा दिन कर, थोड़ा सा एडजस्ट कर, रोते रोते आंखों में आंसू भर के चले जाएंगे, जाना तो है ही है, सीट तो खाली करनी पड़ेगी। यह है आर्ट ऑफ लिविंग, यह है जीने की कला, जिससे हमारा जीवन रसमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, प्रेममय हो जाए। इसलिए समदर्शिनश्च, समदृष्टि का अभ्यास करना चाहिए, समता का अभ्यास करना चाहिए और अपने चित्त को और अपने दिल को इतना मजबूत करना चाहिए। ये जो चुई मुई होती है ना, चुई मुई देखा कि नहीं आप लोगों ने, स्पर्श करने से एकदम मुरझा जाती है, ये चुई मुई कभी साधक नहीं बन सकता। थोड़ा सा अपमान ने स्पर्श किया मुरझा गया, थोड़ा सा हानि का स्पर्श हुआ मुरझा गया, थोड़ी सी प्रतिकूलता का स्पर्श हुआ मुरझा गया। ये तो भैया सूरवीरों का काम है, सुरक्षा धारा निशिता दुरत्यया, जो एकदम सूरवीर है, जिसका दिल मजबूत है, जो अपनी जान हथेली पर रख सकता है, जो अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता है, वही व्यक्ति साधक बन सकता है। ये चुई मुई लोगों का काम नहीं है। थोड़े से अपमान से आंखों में आंसू भर दे और थोड़े से मान को पाने के लिए अपना जीवन लटका दे, जीवन न्योछावर कर दे, जान लगा दे, भैया आप संसार का मान और अपमान लेकर के लेते रहिए, रहते रहिए, देते रहिए, लेते रहिए, परमात्मा से आपको कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने जीवन को इतनी पवित्रता तक ले जाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, मां बनने के लिए प्रसव की पीड़ा उठाना पड़ेगा, तो साधक बनने के लिए अपने दिल को इतना मजबूत करना पड़ेगा। बिना इस मजबूती के हमारी साधना नाम मात्र की साधना रह जाएगी, हम केवल नाम मात्र के साधक रह जाएंगे। कोई भी आएगा एक हवा का झोंका ही गिरा करके चला जाएगा हमको, तो जमराज का सामना कैसे करेंगे, मृत्यु का सामना कैसे करेंगे, अपने अज्ञान का ही सामना कैसे करेंगे। इसलिए अपने चित्त को अपने दिल को मजबूत बनाना, समदर्शिनश्च। ये तीसरा एक कसौटी है जहां पर हम अपने को कस करके देख सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूं। हमारी बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के कसौटी पे घिसते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कौन कितना पका कौन कितना कच्चा। अपने को कभी कसते नहीं है। जब अपने को कसेंगे तो हम एक दिन कसौटी का पत्थर बन जाएंगे और लोग हमारे जीवन को देख करके अपना देखेंगे कि भैया ये वहां खड़ा है, मैं मेरी क्या स्थिति है। अपने को कसने का नाम साधना है, अपने को साधने का नाम साधना है, अपने को संयमित करने का नाम साधना है, अपने को समदर्शी बनाने का नाम साधना है। हमारे भीतर समता कितनी आई, उतने मात्र में हमारे भीतर परमात्मा का प्रवेश है। ये समता परमात्मा का एक दूसरा रूप है, समझिए। परमात्मा का एक दूसरा नाम है शास्त्र में समाह, जो सम होता है उसका नाम परमात्मा है, जो विषम होता है उसका नाम संसार है। जितनी दिल में समता आई समझो उतना दिल में परमात्मा आया। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सब भूतों में मैं सम हूं। सम का वहां मतलब यह है कि मैं कहीं कम कहीं ज्यादा उस रूप से विराजमान नहीं हूं, एकदम एक समान रूप से विराजमान हूं। तो ये जो समता है, समरूपता है, ये भगवान की एक दिव्य विभूति है, ये एक साधक का बड़ा आभूषण है। जितनी हमारे चित्त में समता आएगी, समझो कि उतने अंश में हमारे दिल में परमात्मा आ गए, उतना हमारा जीवन परमात्मा के पास पहुंच गया, उतने हम परमात्मा के सन्निकट पहुंच गए। और ये हम ही कर सकते हैं। शास्त्र, गुरु, हमारे सहयोगी हमें केवल सहयोग कर सकते हैं, हमारा समर्थन कर सकते हैं, वो भी यदि प्रारब्ध अच्छा हुआ और प्रारब्ध अनुकूल हुआ तो, नहीं तो भैया परिस्थितियां विपरीत ही होती। परंतु हर परिस्थिति में साधक की अपनी निजी जिम्मेदारी है, वो अपने कल्याण के लिए काम करे। हमारी अपनी निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मेरी मुक्ति का साधन करूं। हो सकता है आपका श्राद्ध आपकी उत्तर पीढ़ी कर देगी, आपके ऊपर कर्जा रह गया तो आपकी आने वाली पीढ़ी सुखा देगी। आपने किसी को धन दिया था, लेना बाकी रह गया, आपकी उत्तर पीढ़ी ले लेगी। आपने कल्याण नहीं किया तो आपके आत्म कल्याण के लिए ना उत्तर पीढ़ी कुछ कर सकेगी, ना पूर्व पीढ़ी कुछ कर सकेगी। 20 वाला ये जो कुछ कर सकता है, और वो आप है, वो हम है। इसलिए साधकों को अत्यंत सजगता से और अत्यंत ईमानदारी से ये जो कसौटियां हैं, इनके ऊपर अपने आप को कसते हुए अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और ये जो आभूषण है साधना के, समता है, दया है, करुणा है, मैत्री है, प्रेम है, इनसे अपने जीवन को सुवासित करते हुए साधन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चतुर्थ पॉइंट और छूट गया, फिर भी कर्तारम अवगम्य अन्यम तदर्पितानि कुर्वान्ति कर्माणि परिपाक फलानि धन्या। इसके ऊपर बोलने की इच्छा थी, परंतु मेरा तो चित्त वहां पहुंचा ही नहीं। ये एक ही जगह ऐसा अटक जाता है कि एक ही चीज का मन रस लेते लेते, आज मेरी इच्छा थी कि इसको पूरा कर दूंगा परंतु पहुंचे नहीं, चतुर्थ पॉइंट छूट गया। और अत्यंत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, कर्तारम अन्य अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्या। इसकी थोड़ी भूमिका बना दूं, कल इस पे हम विचार से चिंतन करेंगे। कर्म साधक के लिए दोधारी तलवार है। कर्म ही मोक्ष का दरवाजा है और कर्म ही बंधन का प्रबलतम कारण है। कर्म बंधन का कारण, ये तो हमारा अपना ही अनुभव है। कर्मों के बोझ से हम इतने दबे हुए पड़े हुए हैं कि आदमी 60 हो जाते ही रिटायर होना चाहता है, पीछा छूटे। कर्मों के बोझ से पीछा छूटे, कर्मों के बंधन से पीछा छूटे। तो कर्म का एक एस्पेक्ट है जो हमारे बंधन का कारण है, और यदि कोई मुक्ति का दरवाजा है तो वो भी कर्म ही है। ये जो कर्म का द्विस्तरीय रूप है, हमारे बंधन का कारण है और हमारे मुक्ति की सीढ़ी है, इसी चीज को भगवान भाष्यकार ने यहां सजा करके रखा है। कर्तारम अन्य अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्माणि परिपाक फलानि धन्या। इसका चिंतन हम लोग अब कल ही कर पाएंगे, घड़ी और परमिशन नहीं देगी। परमात्मा से मैं निर्मल हृदय से ये विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम सब साधकों का जीवन ये जो दिव्य आभूषण गुरु लोग बता रहे हैं, महापुरुष लोग बता रहे हैं, मान और अपमान से हमारा जीवन ऊपर उठे, समता हमारे जीवन को स्पर्श करे, हम समदर्शी बन पाए, ऐसी शक्ति दे ईश्वर, सबको ऐसा आशीर्वाद दे गुरुजन, सब साधकों के ऊपर ऐसा अनुग्रह करे। इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस वाणी को मैं यहां विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।